ओम सिद्धेभ्य नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं मंगलं सर्वमंगलं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु चौबीस तीर्थंकर महाप्रमा पुराण भगवान आदिनाथ की कथा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भोग भूमि की चर्चा भी चल रही है। आहार दान के प्रभाव से जो राजा ऋषभ देव का जीव वज्रजंग और श्रीमती सहित चार पशु और तीन पशु और ये सभी जीव आहार दान के प्रभाव से, आहार दान की अनुमोदना के प्रभाव से भोग भूमि में जन्म लेते हैं। और वहीं दो मुनिराज आकाश मार्ग से उतरते हैं, और दो मुनिराजों में से एक मुनिराज वो मंत्री था जिसने राजा महाबल आदिनाथ की पूर्व के दसवें भव पहले की बात राजा महाबल को धार्मिक उपदेश दिया था, जहाँ से आदिनाथ के जीव को धर्म की रुचि लगी थी, जिसके द्वारा उपदेश देने से वही आज वर्तमान में मुनिराज के रूप में सामने आए हैं और सम्यक दर्शन का उपदेश देना चाहते हैं। जिसमें यहाँ 24 तीर्थंकर महापुराण में सम्यक दर्शन के आठ अंगों के लिए आठ लाइनें लिखी है, एक एक अंग के लिए एक एक लाइन, जिनमें हमने निशंकित अंग की लाइन की चर्चा पूर्व के संडे में की थी। आज हम निशंकित के साथ निःकांचित अंग की चर्चा भी करने वाले हैं। सम्यक दर्शन के आठ अंग, चूंकि वर्तमान में पंचम काल का समय चल रहा है, यहाँ मुक्ति की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, सम्यक दर्शन हो सकता है और सम्यक दर्शन ही वर्तमान समय में हमारा लक्ष्य है। अगर सम्यक दर्शन किसी जीव को हो जाता है तो समझना कि ये नरभव सफल हो गया, और सम्यक दर्शन नहीं होता है तो समझना कितना ही कुछ भी धर्म किया हो लेकिन ये नरभव व्यर्थ चला गया, व्यर्थ गवाना। इसलिए यहाँ हम समय सम्यक दर्शन की इस चर्चा को थोड़ा स्लो ले रहा हूँ, थोड़ा आराम से हम इसको समझते हुए जाएंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था निशंकित अंग की लाइन, तुम इस श्रेष्ठ जिन मार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। इस लाइन पर हमने काफी चर्चा की थी, मैंने काफी सारी बातें बताई थी कि तुम इस श्रेष्ठ जिन मार्ग को जानकर का मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले तुम भले पूरी दुनिया में घूम लो, लेकिन एक बार अगर श्रेष्ठ जिन मार्ग को जान लिया, समझ लिया, तो उसके बाद मार्ग संबंधी शंका तुम्हारी छूट जानी चाहिए, छूट जानी चाहिए। अगर आपको स्वाध्याय करने के बाद भी अगर मन में थोड़ी सी भी शंका उठती है, यार ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब आपको अभी सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पर भरोसा नहीं है, नहीं। वर्तमान समय में हम जैन होते हुए भी कितनी मिथ्या मान्यताएं पाल करके बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे मिथ्या मान्यताएं पाल करके बैठे हुए हैं, और यही कारण है कि हम दुखी हैं। हमारे दुखी रहने का दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ मान्यता। एक मान्यता के अंदर जैसी वस्तु है उसे वैसा ना जानकर अन्य जानते हैं, बस इसी कारण से दुखी। जैसा है वैसा जान लिया तो सुखी हो जाए, वो उतना निर्णय हम कर नहीं पा रहे, यही कमजोर पड़ जाते हैं, यही हमारे पुरुषार्थ में कमी आ जाती है कि हम उसका निर्णय नहीं कर पाते। तुम इस श्रेष्ठ जनमार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। यही सत्य है, वीतरागता ही सत्य है, जगत में सहज रहना ही धर्म का कारण है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए सहज रहना सीखो। अभी जो डॉक्टर भारिल जी हैं, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, उन्होंने 4 पद्य रचना की है, बहुत अच्छी पद्य रचना की है। उनमें से एक रचना सहज नाम की है। उस सहज रचना वास्तव में बहुत गजब की है। जब मैं 2 दिन के लिए सूरत गया था तो यहाँ से पहुँचा मैं 10 बजे, 10:30 बजे दादा का प्रवचन था और मैं जाके बैठ गया। उस दिन मैं समझो कि इतना आनंद आया वो 1 घंटा प्रवचन सुन के दादा का उस सहज रचना के ऊपर, कि जगत में कितनी भी बड़ी से बड़ी कैसी भी परिस्थिति आए उसे सहज भाव से सहना सीख लो। सहज भाव से हमें सहज रहना सीखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जितने महापुरुष हुए ना, जितने भी महापुरुष जिनका वर्णन हम प्रथमान योग में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता सहज रहते थे। आप रामचंद्र, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो सहज रहते थे। सबसे बड़ी विशेषता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो सहज रहते थे। चाहे कोई भी मायावी पुरुष उनके सामने किसी भी रूप में आए, लक्ष्मण को तुरंत क्रोध आ जाता था। लक्ष्मण किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता था 14 वर्ष के वनवास के समय पर, लेकिन श्री राम हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा सहज रहते थे। ये अपने राम कथा में आता है। सहज और स्वीकारना नहीं, अंतर है। स्वीकारने में और सहज रहने में अंतर है। सहज यानी सरलता, मतलब सहज माने जैसे हैं वैसे रहना। सहज माने जैसे हैं वैसे रहना, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, स्वीकारना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। सहज अवस्था में नेचुरल नेचुरल रहो। सहज माने नेचुरल रहो। और मैं थोड़ा सा सहज को आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई भी घटना हमारे सामने घट रही हो, कोई भी घटना घट रही हो, किसी के साथ अच्छा हो रहा हो, किसी के साथ बुरा हो रहा हो, आप उस समय अगर किसी के विषय में अच्छा सोचते हैं, किसी के विषय में बुरा सोचते हैं, तो आपके परिणाम तुरंत आकुल व्याकुल होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाते, उसके बाद भी परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं। इसलिए जान करके कि जो होना है वो होना था, जो वर्तमान में हो रहा है वो होना था, आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर सहज रहो। आप कुछ कर नहीं सकते तो आकुल व्याकुल होने का कोई मतलब नहीं।
अच्छा भी हो रहा तो उस दिन
कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ नहीं। अब हम लोग सिर्फ करने कर्ता बने का भार लेकर के अपने ऊपर बैठे हुए हैं, कर्ता बने का भार लेकर के। आज अभी SP भारत जी का एक व्याख्यान हुआ, किस पर? विकल्पों का मायाजाल, विकल्पों का मायाजाल पर एक व्याख्यान हुआ SP भारत जी का सूरत में अभी रात को। तो मैं यहाँ यूट्यूब पे उसे सुन रहा था, तो वहाँ 2-3 लोगों से उन्होंने प्रश्न को पूछा, विकल्प आपको कैसे कैसे विकल्प आते? तो एक व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन घर से बच नहीं पाता, गृहस्थी भी पूरी संभालनी है, प्रवचन में लेट आया क्योंकि घर पे काम था, सब कुछ देखना है, सब कुछ तब संभालना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो यही दुख का कारण है कि वास्तव में तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी जरा सी भी नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को घर का बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हो। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है हमारा, और इस मान्यता को कोई बदल नहीं सकता। कर्ता बुद्धि स्वयं ही बदलना पड़ेगा। आप सोचो छोटे छोटे बच्चे लव कुश कैसे पले होंगे, लव कुश वन में कैसे पले होंगे, उन्हें किसने पाला? आप सोचो कि जब फुटपाथ पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ स्टेशन के बाहर रहते हैं, किस तरह से पलते हैं, कौन पालता है इनके? तो चलो आपको माता पिता भी दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे कई अनाथ बच्चे होते हैं सड़कों पर, खुद अपना पेट भरते हैं, उन्हें कौन पालता है? अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं ऐसे, कौन पालता है? कुछ गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ करके बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के भी गुंडे बन जाते हैं, उन्हें कौन पाले? कौन पाले? तो कहने का मतलब ये, हम जो कर्ता बने की बुद्धि रख करके बैठे हैं ना कि मैंने किया, मैं अगर नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा, यही दुख का कारण है। क्योंकि एक एक जीव, एक एक जीव का फ्यूचर अनंत काल पूर्व से ही निश्चित है, निश्चित है। अगर वो आपके द्वारा भी हो रहा है तो भी सहज हो रहा है, होना था, हाँ निमित्त है लेकिन होना था, वो सहज हो रहा है, होना ही था। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। आप कहो कि भैया सिंह को दो मुनिराजों ने उपदेश दिया तब सम्यक दर्शन हुआ, अरे वो तो देना ही था उस समय, वो तो पांचों समवाय उस समय मिलने थे तो मिलने थे। दो मुनिराज जरा सा भी अगर करता था, मान ले कि मैंने तीर्थंकर के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराया तो अनंत काल का संसार में भटकेंगे, सोचो अनंत काल तक संसार में भटकेंगे। ये जरा सा कर्तापन हमें डुबा देता है, ये मार्ग संबंधी शंका है। वीतरागता के मार्ग को नहीं पहचान, वीतरागता के मार्ग को नहीं पहचान। भगवान की पूजा भक्ति इस तरीके से करना कि भगवान को कर्ता मानो, हम लोग भक्ति का अतिरेक कर देते हैं। अतिरेक से मतलब समझे, अतिरेक, अतिरेक मतलब उसमें बह जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। हमारे यहाँ एक बात लिखी है, विनय, विनय जो शब्द है ना विनय, उसे दोनों चीजों में लिखा है, सम्यक में भी और मिथ्यात्व में भी। विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है, पांच मिथ्यात्व में विनय नाम का मिथ्यात्व भी होता है। तो विनय कितनी करना कि यथा योग्य, एक शब्द है यथा योग्य विनय करना, जिसकी भी करो ना ज्यादा ना कम, हाँ वो समझ गए ना, ज्यादा ना कम, मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती की विनय कितनी होनी चाहिए उसे उतनी करना। अब है तो चौथा गुणस्थान वर्ती, आप लेके अष्ट द्रव्य और पूजन करने लगो तो ये मिथ्यात्व में आए, है तो पंचम गुणस्थान वर्ती आप अष्ट द्रव्य लेके पूजन करने लगो तो ये मिथ्यात्व। तो पूजा किसकी करना कि देव शास्त्र गुरु की, दिगंबर की, मुनिराजों की, अरिहंत परमात्माओं की, सिद्ध परमात्माओं की, चिन्वाणी माता की, ये पूजा करने योग्य है अष्ट द्रव्य से। श्रावक पूजने योग्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं आरिका माताओं की भी पूजा होती है, एलक चुल्लक की भी पूजा होती है, तो ये भक्ति का अतिरिक्त हो गया, अभी ये मिथ्यात्व माना जाता है। समझ में आया? इस तरीके से मार्ग संबंधी शंका को जानो, जिन मार्ग को जानकर, श्रेष्ठ जिन मार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो, पहले इसको समझो, इसका अध्ययन करो, बार 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 अध्ययन करो। ऐसा नहीं कि जो मन में आया उठा, कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, वो चल दिया, ऐसे नहीं, ऐसे तो भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। अगर रास्ता पता नहीं हो, जब हम कहीं जाते हैं ना यात्रा पे, रास्ता पता नहीं हो तो पूछ कर जाना चाहिए, और वो भी पूछ कर जाना चाहिए भी नहीं, एक से नहीं पूछते। आपने देखा होगा कभी रास्ता पूछते हो, 10 लोगों से पूछते हैं कम से कम, कदम कदम पे पूछते हैं कहीं गलत तो नहीं आ गए, बार बार पूछते हैं। ऐसे ही यहाँ आप पूछना क्यों नहीं चाहते, यहाँ आप स्वाध्याय करना क्यों नहीं चाहते, ऐसे ही जिसने बोल दिया आगे क्यों बढ़ने लगते हैं, ये गलत है। मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो, जिन मार्ग को जान करके, भली भांति जान करके। एक एक चीज, तो फिर से कैसे हम बच सकते हैं इन शंकाओं से, कैसे हम बच सकते हैं बाहर के वातावरण से, फिर से वही एक शब्द कि सहज रहो, सहज रहो, कुछ भी परिस्थिति हो सहज रहो। बेटा अगर बेटा अगर पढ़ाई में अच्छे नंबर ला रहा है तो, नहीं ला रहा है तो, सहज रहो। क्योंकि देखो ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम ऐसा होता है, जिसका जितना हो उतना ही होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ता है अपने अपने कर्म के अनुसार। आपको क्या लगता है, मारीचि को कोशिश नहीं, क्योंकि बचपन से तीर्थंकर की गोदी में जो खेल रहा है, तीर्थंकर के जीव की गोदी में खेलने वाला व्यक्ति अगर ऐसा विरोध करके चला जाए तो इससे समझ जाना चाहिए कि हमारा बच्चों पे अधिकार नहीं होता, नहीं होता। ये मनुष्य भाव आपको बच्चे, बीवी बच्चे पालने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य भाव आपको अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिला। थोड़े कटु शब्द है, थोड़े से कठिन शब्द है, कठिन शब्द है थोड़े से, लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है। अगर ये सत्य नहीं होता, ये सत्य नहीं होता तो प्रथमानुयोग का उदाहरण, फिर से प्रथमानुयोग का उदाहरण, कि तीर्थंकर और दिगंबर मुनिराज घर छोड़कर कभी नहीं जाते। अगर वास्तव में बीवी बच्चे पालना ही हमारा कर्तव्य होता, यही कर्तव्य होता, तो तीर्थंकर और मुनिराज घर छोड़कर कभी नहीं जाते। माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना ही अगर हमारा कर्तव्य है, तो कोई माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा वनों में जाए, लेकिन फिर भी वनों में जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि ये सब माता पिता हर भाव में बदलते हैं, हर भाव में बदलते हैं। थोड़ा सा कठिन शब्द है, कोई सुने तो ये कहेगा यार आप ऐसा बोल रहे हो माता पिता के बारे में, लेकिन सच तो यही है, ये माता पिता हर भाव में बदलते हैं, पता नहीं कितने आते हैं और कितने जाते हैं। हाँ, ये रिश्तेदार हर भाव में बदलते हैं, पल पल में बदलते हैं, ये समझो। तो क्या करना कि ये भाव इतनी मुश्किल से, इतने पुण्य के उदय से आपको अपना आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। श्रेष्ठ जिनमार्ग को जानकर मार्ग संबंधी शंका को छोड़ो। अभी इस लाइन को अगर मैं और खोलना चाहूँ तो बहुत खुलेगा इस लाइन को। हमारी शंका तो बहुत है, जिनमार्ग में बहुत शंकाएं हैं। सोनागिर में तो मैं हर शनिवार शंका समाधान करता था, तो बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर के आते थे और मुझे बड़ा आनंद आता था समाधान करने में उनका। बहुत सारी शंका। आज हमें साइंस पे भरोसा होता है, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा की बात पर भरोसा नहीं होता, नहीं होता। पुराने समय में देखो आचार्य बिना किसी सहारे के हवा में चलते हैं। है कोई ऐसा साइंटिस्ट वर्तमान में जो खुद हवा में चल सके? कोई नहीं। साइंटिस्ट वो हुआ करते थे, सच्चे साइंटिस्ट वो थे पुराने समय के, जिन्हें रिद्धियां प्राप्त होती थी, जो रिद्धियों से कार्य करते थे। वर्तमान साइंटिस्ट कुछ नहीं। समझ में आया? देखो दूसरा वाक्य क्या है, आज दूसरे वाक्य पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। मार्ग संबंधी शंका के बारे में खूब विचार करना, खूब विचार करना। थोड़ी सी भी अगर जिस धर्म के विषय में शंका होना, तो उसका समाधान जरूर करना, जरूर करना। और सहज रहना सीखना चाहिए, कुछ भी हो जाए सहज रहना सीखना चाहिए। देखो निकांक्षित अग्नि के विषय में क्या लाइन लिखी है, भोगों की आकांक्षा दूर करो और धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो। पहला पॉइंट क्या है कि भोगों की आकांक्षा को दूर करो। सबसे पहला तो ये कि देखो हम सोचते हैं कुछ के भैया मेहनत तो करना चाहिए, अच्छा खाने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? अच्छा खाने के लिए अच्छी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर बड़ा घर बनाना है तो बड़े घर के हिसाब से मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर इज्जत बनानी है चार लोगों के सामने, तो बड़ा आदमी तो बनना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी दिन रात एक करके। तो कह रहे हैं भोगों की आकांक्षा दूर करो भाई, भोगों की आकांक्षा दूर करो। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था चक्रवर्ती बनने के लिए? बताओ। हाँ, लेकिन जैसे भरत चक्रवर्ती ने पूर्व पुण्य के उदय को छोड़ दो, लेकिन वर्तमान में जब उनका मनुष्य भव में जन्म हो चुका है, अब उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी कि वो चक्रवर्ती की नौकरी पाए? कितनी मेहनत की होगी, दिन रात एक करके जागे होंगे खूब। कैसे हुआ? पूर्व पुण्य का उदय, पूर्व पुण्य के उदय से वो चक्रवर्ती बने। अब ऐसे ही आप लगा लो यहाँ वर्तमान में, जैसे वो चक्रवर्ती राजा थे, ऐसे ही वर्तमान में आप लगा लो पीएम कैसे बनोगे, सीएम कैसे बनेंगे? इतना यशस, यश कीर्ति, ये क्या है? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये जितने भी लोग हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, जितने भी लोग हैं, कैसे बनेंगे? कितनी मेहनत करके बनेंगे कि भैया दिन रात एक करके जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति की से भी बुझो तो एक ही बात बोलेगा कि चाणक्य की नीति पढ़ो, इतनी सारी किताबें पढ़ो, दिन रात एक करके पढ़ना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब जा करके ऐसा बनते हैं। हमने कहा कुछ नहीं, जीरो। हाँ, ये पुण्य का उदय, पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं, हमेशा, हर घड़ी, हर घड़ी साथ साथ चलते हैं। पल पल में पर्याय बदलती, पल पल में, एक समय में हंस रहा था, एक समय में रो रहा है, होता है कि नहीं होता? अभी अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी बना रहा था, फैक्ट्री से फोन आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, अब रो रहा है। कैसे पुण्य का उदय होता है और कैसे पाप का उदय, इसका कोई बता नहीं सकता। तो इसके लिए आप सोचो कि आप कुछ कर सकते हैं, तो गलत है। तो भोगों की आकांक्षा मत करो। मैं जब कोटा में था तभी मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे, पढ़ने वाले मेरे साथ खूब कहते थे, संभव तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें जिनवाणी पढ़ने से सारा काम होगा, सारा लाभ होगा। भैया लौकिक किताबें पढ़ोगे, कॉलेज की पढ़ाई करोगे तो जीवन में नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी, तब जीवन अच्छा होगा, तो तुम धर्म प्रचार भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। अरे नहीं, मैंने कहा देखो अगर पुण्य का उदय हो ना, पुण्य का उदय, तो जिस तरह से मैं पुण्य के उदय से कोटा महाविद्यालय में मुझे जिनवाणी पढ़ने को मिली है, मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, उस तरह से उसी पुण्य के उदय से मेरे पास नौकरी भागी भागी आएगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। सच तो यही है कि उसी पुण्य के उदय से जब मैं कोटा संस्थान पढ़ाई करके घर गया तो मुझे सोनागिर से कॉल आ गया, सोनागिर 2 साल जॉब कर ली, उसके बाद बम्बई से कॉल आ गया तो मैं बम्बई भी आ गया, मुझे कहीं भागना नहीं पड़ा। आगे भी जो होगा तो होगा, उसके लिए मुझे सहज रहना है, चिंता नहीं। मुझे आज भी कोई चिंता नहीं है कि मुझे कल यहाँ रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे कल क्या करना है कि नहीं, कुछ करना है कि नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। अगर नीचे गिरना होगा तो नीचे भी गिरेंगे, ऊपर चढ़ना होगा तो ऊपर भी चढ़ेंगे, लेकिन रहना हर परिस्थिति में सहज है, ये सुख का कारण है, ये सुख का कारण है। सबसे बड़ा बल इससे मिलता है, हाँ, वो की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, ना खाने का शौक ना पहनने का शौक। जिनवाणी पढ़ो और तत्व निर्णय करो, यही 2 कार्य अभी वर्तमान समय में हमारे हैं। जिस जीव को भोगों की आकांक्षा है वो पूरा भव व्यर्थ गवाता है, पूरा भव रोते रोते निकालता है, रोते रोते, और भोग नहीं भोगता, भोग नहीं भोग पाता, सुख नहीं मिल रहा ना, कोई भोग से सुख नहीं मिल रहा, इसलिए भोग नहीं भोग पाता हो। हाँ, अब देखो क्या होता क्या है, जैसे खूब पैसा कमाना है, जीजी को खूब पैसा कमाना है, तो आप देखो पैसा कमाने के विषय में व्यक्ति कंजूसी करता है, वो पैसा खर्च करना भूल जाता है, लेकिन फिर पैसा कमाने वाला व्यक्ति पैसा खर्च करना भूल जाता है, आप देखना कभी भी, हाँ वो भोगना नहीं चाहता ना उसको, वो इकट्ठा करना चाहता है। होता क्या है, मैंने तो देखा है, प्रत्यक्ष घटना है, एक जगह एक मंदिर था, मैं वहां गया था उधर ट्रस्ट में ऐसे दर्शन करने के लिए, एक जगह देखा था मैंने, तो वो ट्रस्टी से जो करोड़पति थे उनसे उन्होंने कहा भैया मेरी पत्नी बीमार है तो मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मेरी तनख्वाह में से बाद में काट लेना। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। करोड़पति व्यक्ति था, उसने अपने पुजारी की पत्नी के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपये के लिए मना कर दिया। लेकिन मैंने देखा वहाँ का मैनेजर था, वो भी नौकरी कर रहा था, मैंने तुरंत जेब में से निकाल के 10,000 रुपये दे दिए, ले भाई दे देना, जब लौटाना हो लौटा दे। ये होता है एक विशेषता। एक वो करोड़पति था, वो भोगों की आकांक्षा में इस तरह से फंसा हुआ है कि वो जेब से 10,000 रुपये निकालने में उसको 10 बार सोचना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है तो भी नहीं निकलते। एक तरफ हमारे आसपास के लोग जो एक दूसरे की मदद करने के लिए कभी 1% नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि ये मुझे वापस देगा कि नहीं देगा, कभी नहीं विचार आता, ये होता है। जो भोगों की आकांक्षा में उलझा रहता है वो जीव जिंदगी भर इकट्ठा करता रहता है, और इस परिग्रह के साथ मरण करने पर नियम से वो नरकगामी होता है। नरकगामी कह लो या फिर नीच गति में जाए, निश्चित रूप से, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में क्या लिखा कि कोई राजा, चक्रवर्ती राजा, अगर राजभोग के समय मरण करे, मतलब राजयोग राज अवस्था में मर जाए, तो नियम से नरक जाएगा, और ऐसे वैसे नरक नहीं जाता, सीधा 7वें नरक में जाता है, सीधा 7वें नरक में। पता है 7वें नरक में क्यों जाता है, क्यों जाता है 7वें नरक में ऐसा जीव, क्योंकि नरक 8वां नहीं होता है, इसलिए 7वें नरक में जाता है। सच बात तो यही, अगर 8वां होता तो 8वां में जाता। कारण ही लिखा है ना, जिनवाणी में लिखा है, पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा कि बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक का कारण है। ये नहीं लिखा कि आरंभ और परिग्रह नरक का कारण, आरंभ परिग्रह नहीं लिखा, आपको जितनी जरूरत है उतना कार्य करो वो ठीक है, लेकिन बहु आरंभ बहु परिग्रह वो नरक का कारण। नियम से
पहले नरक से साधारण दुख ज्यादा है,
हाँ
पहले नरक से साधारण दुख ज्यादा है,
दुख बढ़ता जाता है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में दुख बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है। सातवें की 33 सागर है पहले की 10,000 वर्ष। ऐसे जैसे जैसे नरक बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, दुख वेदना बढ़ती जाती है। पहले शुरू के 3 में शायद गर्मी और नीचे के 4 में शायद सर्दी है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। और इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि आपने छेड़ाला में पढ़ा है कि सुमेरु पर्वत को लोहे का सुमेरु पर्वत और अगर गोला डाले तो वो जल जाए, ऐसी शीत उष्णता था है। हाँ, तो इतनी तेज हुई वहां का एक कण अगर यहाँ मनुष्य ये पृथ्वी लोक पे ले आए अपन, नरक का एक कण मिट्टी जरा सी, तो कोसों दूर के लोग उसकी दुर्गंध से मर जाए, इतनी खतरनाक दुर्गंध। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ लोहा गल जाता है क्या -42 में? लोहा गलता है कभी? देखा आपने लोहे को गलते हुए? अरे वहां लोहे का सुमेरु पर्वत, मतलब समझे 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा लोहे का गोला अगर नरक में डालो तो क्षण मात्र में गल जाए, इतनी शीत, इतनी गर्म, इतना दुख भोगना पड़ता है। चाह कर आप सुसाइड नहीं कर सकते, विक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर होता है तो जितना काट दोगे वो वापस मिल जाता है, वापस मिल जाता है, पारे की तरह वापस मिल जाता है। तो दुख बहुत, कहीं शांति नहीं मिलती। दौड़ करके पेड़ की छाया के नीचे बैठता है तो पेड़ से पत्ते जो गिरते हैं वो काट देते हैं शरीर, खून और पीप की रक्त की नदियां बहती है कहीं। और बिच्छू, लाखों बिच्छू एक साथ डसते हैं, एक साथ डंक मारते हैं, ऐसी बहुत दुख उसका वर्णन किया। और फिर भूख प्यास, हमसे देखो भूख सहननी होती ना, एक समय की भूख सहननी होती, प्रवचन थोड़ा लेट तक चल जाए तो भूख लगने लगती है। लेकिन वहां देखो 3 लोग को नाच चुखा है, मिटे ना भूख कणा न लाए, मतलब 3 लोग का नाच खाने लायक भूख होती है, इतना अनाज खा जाए तुरंत, इतनी भूख, लेकिन एक कण नहीं, ऐसे प्यास। 7 समुद्र का पानी पी जाए लेकिन पानी की एक बूंद पीने को नहीं मिलती, ये नरक। और हम जरा सी गर्मी में, मेरे से जब भी कोई पूछता है ना यार संभव गर्मी बहुत है आज, इसको गर्मी क्यों कहते हो आप, ये कैसी गर्मी है? हाँ ये कैसी गर्मी है, ये तो बहुत कम गर्मी है, गर्मी तो बहुत सह करके आए हैं, अभी अंदाजा नहीं है, अभी थोड़ा आनंद आ रहा है ना इसमें, सुखाभास का आनंद, तो बड़ा आनंद आ, मजा ले रहे हैं, लेकिन सच्चे दुख का पता नहीं वास्तव। जब जब मेरे को कोई आनंद आता है ना, आनंद, तो मुझे उस समय विचार आता है, उसी समय विचार आता है मुझे कि ये क्षणिक है, खुशी नहीं होती है, किसी भी आनंद को देख करके खुशी नहीं होती। अब तो मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे शुरू से ही, मतलब समझो शुरू से, पहले थोड़ी बहुत हो भी जाया करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। कितना ही आनंद की बात क्यों ना हो जाए मेरे लिए, कितनी भी खुशी की बात क्यों ना हो, लेकिन एक ही विचार आता है कि कोई फायदा नहीं है इसका, क्षणिक है, क्षणिक है, क्या पता अगले समय दुख भोगना पड़े, क्या पता यही खुशी जिसकी वजह से मैं इतना खुश हो रहा हूँ, यही खुशी मेरे दुख का कारण हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब तो सहज रहना सीखना पड़ेगा, सहज रहना, वो मजेदार बात है। भोगों की आकांक्षा दूर करो, धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो, धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो। देखो आज वर्तमान में धर्म का मतलब क्या,
सुखी होना, लौकिक सुख
चाहिए, धर्म का मतलब, धर्म करने का मतलब भगवान हमारी मदद करेंगे, हाँ ये है कुछ, और कहने का मतलब ये कुछ है, यही हमारी मदद कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर लोगों का एक बड़ा अच्छा वाक्य होता है, डॉक्टर लोगों का, देखो अब तो दवाई काम कर सकती है, दवा तो हो गई जितनी होनी थी, अब तो इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, हर किसी का एक वाक्य, अब तो दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और गलत है। और हमारे जैन समाज में तो इतना बड़ा मिथ्या, अन्य लोग कहते हैं वो एक अलग बात है, वो लोग भगवान को कर्ता मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान वितरागी है, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान समय के मुनिराज लोग भी क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आज व्हाट्सएप पे वाक्य देखो आप आते हैं तो कोई पंडित या कोई विद्वान या कोई मुनिराज समाधि को प्राप्त होते हैं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सब देश, पूरे देश की जैन समाज 108 बार नमो का मंत्र का जाप करे। ये क्या है भाई, हमारे 108 बार नमो का मंत्र के जाप से उनकी आत्मा की शांति होगी, ये कौन सा मैटर बिठाया?
हाँ
नहीं देखो, आप अगर 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए बोल रहे हैं तो जो सच बात है उसको बताकर बोलो, मिथ्यात्व को बढ़ावा मत दो। जितना पुण्य लग रहा है उससे डबल पाप लग रहा है आपको। पाप मिथ्यात्व पाप की जड़ मूल है, जड़ मूल है मिथ्यात्व पाप की जड़ है। इससे आप सोचो, वो जो था ना सत्य धर्म में प्रसिद्ध राजा, हाँ राजा वसु, राजा वसु सप्त वो सत्य धर्म में जो प्रसिद्ध था, क्यों गया वो नरक में, सातवें नरक में क्यों गया झूठ बोलने के लिए? हाँ लेकिन झूठ तो हम और लोग भी बोलते हैं, उसके झूठ बोलने से कौन सी बड़ी बात हुई? क्योंकि वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध था सत्यवादी के नाम से कि वो झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन उसने झूठ बोल दिया, उसने झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ाया,
झूठ सपोर्ट किया,
सपोर्ट किया, उसने उस झूठ बोलने की परंपरा को आगे बढ़ाया, है ना। अब वो परंपरा आगे चल गई ना, तो अब वही परंपरा आगे चलेगी कौन सी, कि उसने कहा कि बकरे को काटना ही धर्म है, है ना। अज वाली बात थी ना, अजमाने चावल होता है और अजमाने बकरा भी होता है, तो उन्होंने गुरुजी ने तो अज के शब्द का अर्थ चावल बताया था कि जो चावल द्वारा ना उगे ऐसा चावल भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अजमाने बकरा भगवान को चढ़ाया, तो इससे ये प्रसिद्ध चल जाएगी आगे। तो मेरा मतलब ये, अब उन्होंने जो बताया, जैसे आपने कह दिया कि नौ किसी की आत्मा की शांति के लिए नमोकार मंत्र पढ़ो, अब ये परंपरा चलेगी। अब हर व्यक्ति को क्या लगेगा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सामने वाले की आत्मा की शांति हो जाती है, और ये गलत हो गया, ये मिथ्या, ये जैन धर्म के विरुद्ध है। हाँ अरे भक्तामर स्त्रोत्र को तो मेडिकल स्टोर बना के रखा होगा, मेडिकल स्टोर। हाँ देखो हर रोग की दवा बना रखी है उसको, हर एक श्लोक से। हाँ कि पेट दर्द के लिए ये वाला श्लोक बोल लो, आंखों की दर्द के लिए ये वाला श्लोक बोल लो, हाँ एग्जाम के पास होने के लिए, हर रोग की दवा भक्ता हमारे स्रोत बना के रखो। मतलब बीत रही प्रभु आदिनाथ भगवान की मांग तुम आचार्य ने लिखा। हाँ तो मांग तुम आचार्य ने जो भक्ति की है, इतनी बढ़िया भक्ति की है, उसमें 48 श्लोकों में उन श्लोकों को पढ़ते तो कितना आनंद आता है, लेकिन उस श्लोकों को इन्होंने मेडिकल स्रोत बना के रख दिया। जवाब क्या देते हैं कि अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं। अरे नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन इस तरह से पढ़ना उसका अनादर है भाई, इस तरह से पढ़ना उसका अनादर है। बेटा पापा को पापा की जगह चाचा बोले तो कैसा लगेगा? अच्छा पापा नहीं बोले तो सही है कि चाचा बोले तो सही है? हाँ अगर बेटा पापा को पापा नहीं बोले तो एक बार को चल जाएगा कि तू मत बोल, लेकिन चाचा बोलेगा तो नहीं चलेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तुम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ो तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन उसका अनादर करके गलत रूप में पढ़ोगे तो वो नहीं चलेगा, वो जैन धर्म के विरुद्ध है, वो पंच परमेष्ठी का अनादर है, सम्मान नहीं है, वो सम्मान नहीं है। वीतरागी प्रभु को अगर आप कर्ता मान करके कोई भी कार्य करते तो सम्मान नहीं होता। जैन धर्म को तो मजाक बना के रख रखा है, लिखा मैंने एक बार पहले भी बोला था, अभी पिछले संडे उससे पहले संडे अखबार में लाइन पढ़ी थी मैंने, विश्व शांति के लिए शांति धारा, विश्व शांति के लिए मंदिर में कराई शांति धारा। आप सोचो कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक पे बोल दिया कि भैया जैन मंदिर में विश्व शांति के लिए शांति धारा कराई थी, लेकिन विश्व में शांति क्यों नहीं हुई, तो क्या जवाब दोगे? क्यों आपके भगवान क्या ऐसे ही है, शांति धारा करने से कोई फायदा नहीं हुआ, सुनते नहीं है आपकी, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं इकट्ठा तो मतलब भीड़ इकट्ठी थोड़ी ना करनी है, अपन दुकान थोड़ी ना है हमारी रेस्टोरेंट की, भैया कैसे भी हो भीड़ इकट्ठी करनी हो दुकान में, दुकानदार होते हैं ना, दुकानदार बिजनेस बढ़ाना होता है तो वो कुछ भी हो कुछ भी करने को तैयार होते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है हमारा धर्म का कि भैया लोग इकट्ठे करने हैं हमें यहाँ। बिल्कुल सही बात है आपने कहा कि अशुभ से शुद्ध की ओर तो नहीं ले जा सकते, तो अशुभ से शुभ की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये शुभ की ओर नहीं अशुभ की ओर ही आ रहा है, ये नहीं समझ पा रहे ना हम, इस बात को नहीं समझ पाए ना हम। हम लेके तो जा रहे हैं वो बात तो समझ सही है, आपने कोशिश की भावना भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो विचार करो कि हम उसे जहाँ ले जाना चाह रहे हैं वहां ले जा पा रहे हैं या नहीं। आप सोच रहे थे कि ये भगवान के दर्शन करने जा रहा है एग्जाम के चक्कर में तो ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में तो उसे पुण्य की जगह पाप का बंद हो रहा है। अब बोलो, वो शुभ की जगह अशुभ भाव में चला गया तुरंत दो मिनट में। भोगों की आकांक्षा दूर करो, पहली बात। बच्चे को बचपन से अगर सच कह रहा हूं आज जैन धर्म पे अगर युवा पीढ़ी भरोसा नहीं करती तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारा ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बचपन से सिखाया ये कि हमारा अच्छा बुरा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें लगता है कि ये लोग हमें झूठ बोलते हैं, इन लोगों की अंधश्रद्धा है, ये लोग मानते हैं भगवान अच्छा बुरा करते हैं, इनकी अंधश्रद्धा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, तो मैं इन पे भरोसा नहीं। अगर उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता होगा तो होता कि ये वीतरागी हैं, अनंत सुखी हैं, हम भी इन जैसा बनने के लिए इनके पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चों को सही बात समझ में आती। फिर बच्चे भले मंदिर आए न आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीवन भर जैन धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। हमें बच्चों को मंदिर लाना नहीं सिखाना, हमें बच्चों को जैन धर्म का सच्चा श्रद्धान कराना है, लिखाना, क्योंकि सम्यक दर्शन कैसे होता है गुरुदेव श्री ने क्या बताया सम्यक दर्शन के लिए, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में क्या आता है, रोज आती है गुरुदेव श्री के प्रवचनों बाद कि दया दान भक्ति राग आदि ये सब सब शुभ भाव है, इससे धर्म नहीं। धर्म के लिए निर्णय मात्र काफी है, निर्णय मात्र काफी है, सच्चे श्रद्धान का नाम धर्म है, सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वहां से धर्म की शुरुआत। एक मनुष्य वर्य भव के बाद दूसरा मनुष्य भव मिल सकता है, तुरंत में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब एक भव के बाद अभी मनुष्य में है, दूसरे बार में मनुष्य में आ जाए तो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्म के ऊपर आधीन है, ये आयु कर्म निर्भर करता है, इसमें इसका डिपार्टमेंट आयु कर्म के पास है, अपने हर चीज के डिपार्टमेंट होते हैं ना अलग अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग, तो इसका डिपार्टमेंट आयु कर्म के पास है, वो सब निश्चित कर देता है आयु, हाँ वो आयु कर्म से डिसाइड होता है उसी को। ये जो नरक गति है इसको आयु बोलते हैं, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, इसको आयु कर्म कम, इसका डिपार्टमेंट आयु कर्म, ठीक है ना, तो वो निश्चित होता है। जिस समय आयु कर्म का एक बार अगर आयु कर्म बंध जाता है तो वो भोगना ही पड़ता है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है लेकिन चेंज नहीं हो सकता, कहते हैं ना वारंटी तो है लेकिन गारंटी नहीं है, चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण तो हो जाएगा, जो सातवें नरक की आयु बंधी श्रेणी को, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो वो सातवें नरक से पहले नरक पे आ गया है ना, तो उसका अपकर्षण हो गया लेकिन जाना नरक, एक बार आयु बंध गई नरक की तो नरक तो जाना पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। हमने काफी सारी चर्चा की, निकांक्षित धर्म के फल के भोगों की, धर्म के फल में भोगों की चाह मत करो, बहुत चर्चा हुई, अभी देखो और बहुत सारी बातें इसमें आएगी, निर्विचिकित्सा नमूढ़ दृष्टि अंग इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, अभी की बात करें फिर आप।
निजे निजी निज में बताए अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।